एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोग को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा, वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने ही दूर हमारे गुनहार। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो जो बचाता हमें। बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम उसका वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। ये हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे पास आते हैं। इस समय हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। हमारे मनों को खोल दे, तेरा पवित्र आत्मा से भर दे, मेरे संग हो पिता, विशेष रूप से तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे संवाद को, तेरे वचन को, तेरे सामर्थ्य के द्वारा तेरे लोगों को बतला सकूं। और मेरे हरेक श्रोताओं के संग पिता, उन्हें तेरे वचन के द्वारा बहुतायत से आत्मिक आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। मित्रों, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है एक नई सृष्टि में विश्वास का मूल्य। हम लोग बीते संवादों में सीखे और सुने कि हम स्वर्ग में क्या पाएंगे, क्या ही वह आनंद का घर होगा, क्या कुछ हम वहां पा सकते हैं। पर एक और बात हम लोग को सोचना है और इसमें हम गौर करें कि वहां क्या नहीं होंगे, ये भी एक सोचने का है, वहाँ हमें क्या नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं थोड़े देर के लिए कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। वहाँ पर ये सब नहीं होंगे। पहला बात, हर बुराई का नाश हो चुका रहेगा। नई पृथ्वी के बारे में कुछ सबसे उत्साहजनक प्रतिज्ञाएं इस बात से संबंधित हैं कि वहाँ क्या नहीं होगा। वह उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना बिलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं, प्रकाशित वाक्य 21:4। हमने बीते संवादों में सुना कि वहां पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग उन्नति कर सकते हैं, क्या आनंद हम पा सकते हैं। यहाँ पर हमें बतला रहा है कि वहाँ दुख नहीं होंगे, वहाँ पीड़ा नहीं होगी, ना बिलाप होगा। ये सभी बुराइयाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार के पाप को मिटा देगा जो सभी बुराइयों का कारण है। पवित्र शास्त्र नई पृथ्वी के हिस्से के रूप में जीवन के वृक्ष का उल्लेख करता है, लेकिन इसमें एक बार भी उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष या प्रलोभन के किसी अन्य स्रोत को शामिल नहीं किया गया है। उस अच्छी जमीन पर मसीहों को कभी भी संसार, शरीर या शैतान से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। पाप प्रदूषित स्थान से अप्रवासियों के आने के बावजूद इस बात की निश्चितता कि नई पृथ्वी नई बनी रहेगी वह तथ्य है कि परमेश्वर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों को बाहर कर देगा। प्रकाशित वाक्य 21:8-22:15। उसे ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि जिसमें भी पाप प्रवेश करता है उसे वह नष्ट कर देता है। अभिशाप का प्रत्येक अवशेष मिटा दिया गया है, केवल एक अनुस्मारक ही शेष बचा है। हमारा उद्धारकर्ता अपने क्रूसारोपण के चिन्हों को हमेशा के लिए धारण करेगा। उसके जख्मी सिर पर, उसकी बगल में, उसके हाथों व पैरों पर केवल यही पाप द्वारा किए गए क्रूर कार्य के एकमात्र निशान हैं। मसीह को उसकी महिमा में निहारते हुए भविष्यवक्ता कहता है, उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हबाकुक 3:4। अनंतकाल के युगों में कलवरी के जख्म उसकी महिमा प्रकट करेंगे एवं उसकी शक्ति की घोषणा करेंगे। बिता हुआ याद नहीं किया जाएगा। नई पृथ्वी पर यशाया कहता है, पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार में भी ना आएंगी। यशाया 65:17। इसे संदर्भ में पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि छुड़ाए गए लोग पुराने जीवन के कष्ट भूल जाएंगे। यशाया 65:16। वे उन भले कामों को नहीं भूलेंगे जो परमेश्वर ने किए हैं, उस प्रचुर अनुग्रह को जिसके द्वारा उसने उन्हें बचाया है, अन्यथा यह पाप संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। मसीह के बचाने वाले अनुग्रह का धर्मी लोगों का अपना अनुभव अनंतकाल तक उनकी गवाही का सार है। इसके अतिरिक्त पाप का इतिहास इस आश्वासन का एक महत्वपूर्ण तत्व है कि विपत्ति दूसरी बार पड़ने ना पाएगी। नहुम 1:9। पाप ने जो दुखद परिणाम उत्पन्न किए हैं उनके विचार किसी भी व्यक्ति के लिए एक शाश्वत निवारक के रूप में कार्य करेंगे जो कभी भी उस आत्मघाती मार्ग को फिर से चुनने के लिए आकर्षित होगा। लेकिन जहां अतीत की घटनाएं एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, वहीं स्वर्ग का वातावरण उनके दर्द की भयानक यादों को साफ कर देता है। प्रतिज्ञा यह है कि उनकी यादें छुड़ाए गए लोगों में पश्चाताप, खेद, निराशा, दुखद या क्लेश को नहीं जगाएंगी। तो आइए अब हम देखें एक नई सृष्टि में विश्वास का मूल्य। नई पृथ्वी के सिद्धांत में विश्वास करने से एक मसीह को अनेकों व्यवहारिक लाभ मिलते हैं। पहला है, यह सहन करने की प्रेरणा देता है। स्वयं मसीह ने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। इब्रानियों 12:2। भविष्य की महिमा पर विचार करके पौलुस ने अपने साहस को नवीनीकृत किया, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:16-17। दूसरा है, यह एक पुरस्कार की खुशी और निश्चितता लाता है। मसीह ने स्वयं कहा, आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मत्ती 5:12। पौलुस दोहराता है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। 1 कुरिन्थियों 3:14। तीसरा, परीक्षा के विरोध शक्ति देता है। मूसा को सक्षम बनाया गया कि वह पाप के सुख या मिस्र के धन से दूर हो जाए क्योंकि वह फल पाने की ओर देख रहा था, इब्रानियों 11 का 26। चौथा है, यह स्वर्ग का एक पूर्व स्वाद प्रदान करता है। एक मसीह का पुरस्कार केवल भविष्य ही नहीं है, स्वयं मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह के पास आता है और उसमें बयाने के रूप में रहता है, जो आने वाले आशीर्वाद का आश्वासन देता है। दूसरा कुरिन्थियों 1:22 और 5:5 और इफिसियों 1:14। मसीह कहता है, यदि कोई मेरे शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3:20। और जब मसीह आता है तो हमेशा अपने साथ स्वर्ग लाता है। उसके साथ संगत करने वाले के लिए हृदय में स्वर्ग है। यह महिमा का आरंभ है, यह उद्धार की उम्मीद है। पांचवा, यह अधिक प्रभावशीलता की ओर ले जाता है। कुछ लोग मसीहों को बहुत ही दिव्य मनोवृत्ति का मानते हैं, जैसे कि उनका कोई सांसारिक महत्व नहीं है, परंतु यह मरणोपरांत जीवन में विश्वास ही है जो मसीहों को एक ठोस आधार देता है, जिससे वे संसार को आगे ले जा सकते हैं। जैसा कि C.S. लुईस ने कहा, यदि आप इतिहास को पढ़े तो आप पाएंगे कि वर्तमान दुनिया के लिए सबसे अधिक कार्य करने वाले मसीह केवल वे थे जो आने वाली दुनिया के बारे में सोचते थे। और चूंकि मसीहों ने व्यापक रूप से दूसरे संसार के विषय में सोचना बंद कर दिया है, इस कारण वे यहाँ इतने प्रभावहीन हो गए हैं। स्वर्ग को लक्ष्य बनाओ और आपको पृथ्वी मिल जाएगी। पृथ्वी को लक्ष्य बनाओगे और आपको कोई भी प्राप्त नहीं होगा, यह C.S. लुईस ने कहा था। एक बुद्धिमान व्यक्ति ही मानव को बनाने के बजाय संगमरमर की मूर्ति की नकाशी पर अधिक ध्यान देगा। मसीह जो हमेशा के लिए जीने की योजना बनाता है, स्वाभाविक रूप से अपने जीवन की संरचना उस व्यक्ति की तुलना में अधिक देखभाल के साथ करेगा और इस तरह समाज को अधिक रचनात्मक रूप से प्रभावित करेगा। जो सोचता है कि वह एक बार उपयोग के लिए है, केवल फेंके जाने के लिए पैदा हुआ है। स्वर्गीय विषय में लीन रहने में जिसे पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करता है, आत्म साथ करने की प्रबल शक्ति होती है। इससे आत्मा उन्नत और प्रतिष्ठित होती है। इसका क्षेत्र और इसकी दृष्टि की शक्तियों का विस्तार होता है और देखी और अनदेखी वस्तुओं के मूल्य की अधिक स्पष्ट रूप से सराहना की जाती है। छठा है, यह परमेश्वर के चरित्र को प्रकट करता है। संसार को जिस रूप में हम उसे अब देखते हैं, परमेश्वर के चरित्र और इस ग्रह के लिए उसकी मूल्य योजना दोनों को अनुचित ढंग से प्रस्तुत करता है। पाप ने इस पृथ्वी के भौतिक परिस्थिति की तंत्र को इतना क्षतिग्रस्त कर दिया है कि बहुत से लोग इस दुनिया और उत्पत्ति 1 और 2 में चित्रित स्वर्गलोक के बीच संबंध की कल्पना शायद ही कर सकते हैं। अब अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष जीवन की विशेषता है, यहाँ तक कि विश्वासी का जीवन जिसे संसार देह एवं शैतान के साथ युद्ध करना है, परमेश्वर की मूल योजना को सही ढंग से चित्रित नहीं करता है। परमेश्वर द्वारा छुड़ाए गए लोगों के लिए जो योजना बनाई है, एक संसार जो शैतान के प्रभाव द्वारा अछूता है, एक ऐसा संसार जिसमें केवल परमेश्वर का उद्देश्य शासन करता है, हमारे पास उसके चरित्र का वास्तविक प्रतिनिधित्व है। और सातवां, यह हमें परमेश्वर की ओर खींचता है। आखिरकार बाइबल और गैर धार्मिक व्यक्ति को मसीह की ओर आकर्षित करने के लिए नई पृथ्वी का वर्णन करती है। एक व्यक्ति ने यह सुनकर कि पृथ्वी इसे अदन की सुंदरता में बहाल कर दिया जाएगा, उतनी वास्तविक जितने की पृथ्वी अब है, जो धर्मी लोगों का अंतिम घर होगी, जहां वे सभी दुख दर्द एवं मृत्यु से मुक्त होंगे। वह एक दूसरे को आमने सामने देख सकेंगे, वह जान सकेंगे। शक्ति से विरोध किया, क्यों? उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। यह वह होगा जो दुनिया के अनुकूल है, वह जो दुष्ट चाहते हैं। कई यह सोचते हैं कि धर्म अपने अंतिम फल के साथ कुछ ऐसा होगा जिसकी संसार को कोई इच्छा ना हो। इसलिए जब सुख की किसी भी अवस्था का नाम लिया जाता है जिसके लिए मनुष्य का हृदय अपनी पतित अवस्था में वास्तव में इच्छा करे, वे सोचते हैं कि यह सच्चे धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। सच्चाई से दूर और कुछ भी नहीं हो सकता है। जो लोग उसे प्रेम करते हैं, उनके लिए उसने जो कुछ तैयार किया है, उसे बताने में परमेश्वर का उद्देश्य लोगों को इस दुनिया की अति व्यस्तता से आकर्षित करना है, उन्हें आने वाले महत्व को समझने में मदद करने के लिए और पिता के प्रेमी दिल द्वारा तैयार की गई सुंदर चीजों में झलक दिखाना है। और यह पृथ्वी हमेशा के लिए नया हो जाएगा। फिर इस पुरानी पृथ्वी में अक्सर कहा जाता है कि सभी अच्छी चीजों का अंत होता है। नई पृथ्वी के बारे में सबसे अच्छा सुसमाचार यह है कि इसका कभी अंत नहीं होगा। फिर उस हालेलुया कोरस के बोल पूरे होंगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 11:15। और इसे तुलना करें दानियल 2:44 और दानियल 7:27 से। और पवित्र शास्त्र कहता है, हर प्राणी उस गान में शामिल होगा कि जो सिंहासन पर बैठा है, उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। प्रकाशित वाक्य 5:13। मानव विवाद समाप्त हो गया है, पाप और पापी अब नहीं रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड शुद्ध है, विशाल सृष्टि में सद्भाव एवं आनंद की एक धड़कन गूंजती है। उसी से जिसने हर चीज की सृष्टि की, असीमित अंतरिक्ष के सभी क्षेत्रों में जीवन और प्रकाश और आनंद का प्रवाह होता है। सूक्ष्मतम परमाणु से लेकर महानतम संसार तक संपूर्ण वस्तुएं, सजीव या निर्जीव, उनकी बेदाग सुंदरता एवं पूर्ण आनंद में घोषणा करती हैं कि परमेश्वर प्रेम है। इस तरह का हम वातावरण पाएंगे, हम उस देश का, उस स्वर्ग राज्य का बाट चो रहे हैं जो शीघ्र आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह लौटकर अपने लोगों को ले जाने के लिए आ रहा है। आइए हम अपने मनों को तैयार करें। मैं उस देश में होने के लिए उत्सुक हूँ और इंतजार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब जल्दी वहाँ हो सके। क्या आपका भी यह इच्छा है? प्रभु यीशु मसीह अपना जान देकर हमें पाप से बचाने के लिए आया कि हम इस दुनिया और पाप से बचाए जाएं और इस दुनिया के संकट और दुख और क्लेश से बचाए जाएं और अनंत जीवन पाएं। यदि आप भी उस स्वर्ग राज में होना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ अपने मनों को, अपने जीवन को तैयार करें पवित्र आत्मा के सहायता से और अपने आप को परमेश्वर के सामने धर्मी और पवित्र होने पाए। परमेश्वर के सहायता से ही यह हो सकता है। और यदि आप चाहते हैं अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने रिश्तेदारों को कि वे भी इस स्वर्गीय राज के आनंद में भाग लें, उन्हें भी यह संवाद आप बांटें। आइए हम अपने मनों को पहले तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह को दे दे कि वह इसे शुद्ध और पवित्र करे कि हम उसके राज्य में होने के लायक हो सके। परमेश्वर हमें अपना आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, ताकि हम उसके राज्य के लिए तैयार हो पाए। और मेरी प्रार्थना है कि आप सबों को भी वह तैयार करे और हम सब उसके राज्य में आनंद पाने के लिए हो सके। परमेश्वर हम सबों को बहुत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। तू हमें प्रतिज्ञा किया है स्वर्ग राज का आनंद देने के लिए, बहुत जल्दी हमारे लिए ला रहा है। पिता परमेश्वर, हम जब इस दुनिया में है, इस धरती में, हमें उस राज के लिए तैयार होने के लिए मदद कर। हमारे जीवन को तू तैयार कर पिता। हम तेरे पास आते हैं, तेरा सामर्थ चाहते हैं पिता, तेरा पवित्र आत्मा का मदद चाहते हैं। हम अपने जीवन को तुझ में समर्पित करते हैं। हम सबों को मदद कर और तेरे राज में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और ग्रहण की, आमीन।
प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरे क्षमा कर, तेरी करुणा का अमृत मिले वैसी कृपा कर। हे प्रभु यीशु दया कर, पापों को मेरे क्षमा कर, तेरी करुणा का अमृत मिले
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, Post Box 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।